वो आदमी कौन था? हाँ?
मैंने जॉब छोड़ के कितनी बड़ी गलती की। तुम्हारा मसला सिर्फ वैनोश के साथ नहीं है, सबके साथ है। सबसे पहले खुद अपने साथ।
हाँ हाँ, सच कहती हूँ, मैं पागल हूँ।
रोको, मुझे उतरना है।
मैंने पूछा ये आदमी कौन था। तुम्हारी निगरानी कर रहा था, मैं पूरे टाइम उसको देख रहा था, सिर्फ हमें ताड़ रहा था, सिर्फ हमें ताड़ रहा था।
कसम से अगर उतरने नहीं दोगे तो उसके बाद कभी मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे। रोको, मैं उतरना चाहती हूँ। रोको
समाना।
रोको, मुझे हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ मुझे। मुझे यकीन हो गया कि तुम्हें अपने पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है।
समाना, समाना।
सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम।
खैरियत है?
कैसी खैरियत, हर रोज एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है।
अब क्या हो गया?
मैं अनुज के ऑफिस गए थे।
जी गया था।
अच्छा,
ऑफिस के बॉस को देखा, एक माकूल समझदार और बाइज्जत आदमी है। अब बिला वजह परेशान होती है, क्या वजह है?
चलो खुदा का शुक्र है कि ऐसा है।
अबू कहाँ है?
अरे और मुसीबतें क्या कम थी जो इनका भी इजाफा हो गया। सुबह से नाराज होके सहन में बैठ गए।
क्या हुआ?
पता नहीं।
क्या हुआ?
कुछ नहीं बेटा।
तो इतने फिक्रमंद क्यों हैं?
तुम्हारी माँ से तो बात हो ही नहीं सकती, फौरन गुस्सा हो जाती। तो क्या करूं, हर तरफ निगाह डालता हूं तो खुद को ही कसूरवार पाता हूं।
आखिर किस वजह से?
मैं हमीद के लिए बड़ा भाई नहीं था, मैं उससे हसद करता था। जब अब्बू ने कहा कि यह वर्कशॉप मोहसिन की है, अगर तुम इससे मिलकर काम नहीं करना चाहते तो जहां तुम्हारी मर्जी हो जाके काम करो, तो मैं खुश हो गया। मुझे लगता है हमीद भी समझ गया था कि मैं खुश हुआ हूं।
आप बैठ के ये क्या सोचते रहते हैं?
किसी को भी नहीं। गिरे हुए पानी को इकट्ठा भी कर लो तो उसकी शफाफियत बाकी नहीं रहती।
आप बेफिक्र रहिए, हम अगर हमीद चचा को ना भी ढूंढ सके, अपनी तलाश जारी रखेंगे। उनके बच्चे को, बीवी बच्चों को ढूंढ लेंगे, उनको वापस दादा जान के पास लाएंगे, मुनीर वाले घर में। अगर मिल गए तो ठीक है, और अगर ना मिले तो कम से कम हमारा ज़मीर तो मुतमईन रहेगा ना, हमें मलामत तो नहीं करेगा। अब वो आप बिलावजह अपने आप परेशान कर रहे हैं। कसम से आपका कसूर नहीं है, हमीद चचा और उनकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ उनमें आपका कोई कसूर नहीं है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में करने वाले फ़ैसलों का खुद ज़िम्मेदार है। मुझे याद है जब हम छोटे थे, दादा जान हमेशा कहा करते थे अपने कामों का खुद ध्यान रखो, क्योंकि ज़िंदगी में तुम लोगों को जो भी अच्छा और बुरा पहुँचता है ये तुम्हारे अपने ही अमाल का नतीजा है। हकीकत भी यही है।
अगर मर गया हो तो
आपसे क्या छुपाना, मैं भी कुछ अरसे से यही सोच रहा हूँ, खुदा ना करे। लेकिन अगर फिर भी खुदा ना खासा चचा हमीद को कुछ हो गया है, तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके बाल बच्चों को ढूंढें, उनकी मदद करें। उठिए अबूजान, उठिए। मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ कि हमीद चचा को आपके लिए ढूंढ के रहूँगा।
मेहदी, मोहसिन साहब, आइए आप लोगों के लिए चाय बना दी।
जी अच्छा। या अल्लाह, या अल्लाह, फराज साहब, कमाली साहब,
मेहंदी मियां,
फराज साहब,
मेहंदी मियां आइए अंदर आइए, अंदर आइए मेहंदी मियां, अंदर आइए
फराज साहब,
आ जाए अंदर मेहंदी, अंदर आ जाइए मेहंदी मियां।
फराज साहब, आपको क्या हुआ?
कुछ नहीं मेरे भाई, अगर कुछ पैसा वैसा है तो जरा देना, मैंने नशा नहीं किया, आंखों मार हो गया हूँ, अल्लाह का वास्ता।
आप तो कह रहे थे छोड़ दिया है।
दे दो मेहंदी भैया, खुदा के लिए दे दो, माँ की कसम पैसा आया तो लौटा दूंगा मैं तुम्हें, तुम्हारा नौकर।
मैं इस दलदल में और डूबने के लिए आपको पैसा नहीं दूंगा।
मेहंदी भैया, तुम्हें तुम्हें अपनी बच्ची की कसम, खुदा के लिए वादा करता हूँ, छोड़ने का इरादा किया है बस एक दफा,
कसम ना खाओ।
क्या बात है? हाँ यही है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो भी मेरी तरह इसी तरह है, इसीलिए कहता हूँ उसे मत ढूंढो।
जो एड्रेस तुमने दिया था वहां गया था, पुल के नीचे का कह रहा हूँ, वहाँ कोई भी हमीद को नहीं जानता था, झूठ क्यों बोलते
हैं? खुदा की कसम झूठ नहीं है, रसूल की कसम झूठ नहीं है, मजहब की कसम। हमीद को जब उसकी बीवी ने घर से निकाला तो वहाँ जाके रहने लगा।
बीवी ने क्यों घर से निकाला?
मैं नहीं जानता, मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ था, जब उसने देखा कि रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो जाके उस पुल के नीचे रहने लगा। मैं खुद भी एक दो दफा मिलने गया उससे।
आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे दोस्त जेल में तुम्हें उसकी खबर पहुँचाते थे।
झूठ बोला था।
लगता है बहुत झूठे इंसान हो। अरे बदबख्त, झूठ किस लिए बोलते हो, यानी तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेहंदी मियां, मैंने सोचा कि मैं सच बोलूंगा कि मैं उसके साथ पुल के नीचे रहता था तो आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
मैं वहां गया, पुल के नीचे ढूंढा, वहां किसी ने भी हमीद चचा को नहीं पहचाना। वहां वो मुर्दों तक को पहचानता है लेकिन हमीद चचा कोई नहीं पहचानता था।
उसकी बेटी यहां हाजर स्कूल में पढ़ती है।
हाजर स्कूल कहां है?
यही मुशीरी रोड पर।
फिर पहले की तरह झूठ बोल रहे हो।
नहीं नहीं नहीं, मैं खुद भी एक दो दफा उसके साथ गया हूँ, एक दफा उसको स्कूल के हेडमास्टर ने पुलिस को फोन भी किया था, मैंने देखा कि हमीद वहाँ सिर्फ वो चक्कर हो गया, उसके बाद मैं भी नहीं गया। देखो देखो, हाजी नेमतुल्लाह की कसम सच कह रहा हूँ।
उनके सर की कसम मत खाओ।
ठीक है ठीक है, मुझे मुझे अपनी माँ की कसम, बहन की कसम।
तुमने क्या सोचा है? एक दिन मुझसे ये पैसे ले लिए तुमने, फिर क्या करोगे, आइंदा क्या करोगे बताओ।
कल छोड़ दूंगा ना, डॉक्टर ने कहा है कि वो हम दोनों से ज्यादा बेहतर जानता है, उसने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना पड़ेगा, कल से छोड़ दूंगा, कसम खाता हूँ कल से छोड़ दूंगा।
वालेकुम सलाम, फरमाइए किससे काम था?
मुझे स्कूल के हेडमास्टर से काम
है। आइए जनाब, आइए आइए आइए,
तशरीफ लाएं।
अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा।
वालेकुम सलाम।
इनको मैडम सिराज से काम है।
ठीक,
और कोई काम ना हो तो मैं चलता हूँ।
शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम मैडम
जी, फरमाइए
कैसे हैं आप?
शुक्रिया, आपकी मदद कर सकती हूँ?
जी ज़रूर। असल में लैला फरहमंद के नाम से एक स्टूडेंट को मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे बताया गया कि यहाँ पढ़ते हैं।
माफ़ कीजिएगा, मैं अभी प्रिंसिपल से बात करती हूँ, वो जो कहें।
शुक्रिया। मैं मेहदी फरहमंद हूँ, लैला फरहमंद का चचाजाद।
फरमाइए।
असल में मुझे बताया गया कि चचाजाद लैला फरहमंद यहाँ पढ़ती है।
नहीं, किसने कहा है आपसे? यहाँ कोई भी लैला फरहमंद नहीं है।
लेकिन मैडम, जिसने मुझे बताया है उसको पूरा यकीन था कोई यहाँ पढ़ती है।
अभी यानी इस साल?
सच ये कि मैं नहीं जानता कि वो किस क्लास में पढ़ती है, हम कई साल से एक दूसरे से बेखबर।
हमारे यहाँ लैला फरमन थी एक, लेकिन 3 साल पहले यहाँ थी।
तो चली गई? क्या आप जानती हैं किस स्कूल में गई है?
इस बारे में कोई इत्तला नहीं है।
देखिए मैडम, मैं वाकई में लैला फरहमंद का चचा आजाद हूँ। असल में मेरे चचा चंद साल पहले घरेलू इख्तलाफात की वजह से नाराज होकर अपनी फैमिली से अलग हो गए थे। मैं चाहता हूँ अपनी फैमिली में दोबारा सुलह कराऊँ। आपके पास उनके घर का कोई अता पता है?
उन्होंने घर बदल लिया है, हमारे पास उनका नया एड्रेस नहीं है। होता भी तो आपको नहीं दे सकते थे।
माफ़ कीजिए, मैंने तो आपको अपना कार्ड दिखाया, किस लिए?
लैला फरहमंद की माँ ने उसी जमाने में हमसे कह दिया था कि उनका एड्रेस किसी को ना दिया जाए।
आप कह रही हैं कि किसी को ना दिया जाए, मैं तो उनका रिश्तेदार हूँ।
इत्तेफाक से उन्होंने खास तौर पर फैमिली के ही अफराद के बारे में कहा था।
अरे लेकिन क्यों?
हैदरी साहिबा, जरा बेल बजा दें।
ठीक है, अभी करती हूँ।
लैला फरहमंद यहाँ 3 साल तक पढ़ती रही, उस जमाने में क्यों नहीं ढूंढा आपने उसको?
मैडम, मैं इतने अरसे समझता रहा कि मेरे चचा कुछ घरेलू इख्तलाफात की वजह से अपनी फैमिली से अलग हो गए हैं। मुझे इल्म नहीं था कि एक दूसरे से नाराज। अब मैं चाहता हूँ कि इस नाराजगी को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। मेरे दादा जान काफ़ी बीमार हैं अपने बेटे को ना देखने की वजह से।
यानी आपने इन इतने सालों, सॉरी, आपने कितने अरसे अपने चचा को नहीं देखा?
15-16 साल हो रहे हैं। देखिए मैडम, मैंने अर्ज़ किया ना कि मुझे हाल ही में पता चला है जिस ज़माने में ये हादसात हुए थे और एक दूसरे से नाराज़ हो गए थे। मैं छोटा था, इन बातों का मुझे इल्म नहीं था, लेकिन अब जब समझ गया हूँ तो इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैडम माफ़ कीजिए, आपका नाम क्या था?
मैं सिराज हूँ।
मैडम सिराज, मेरे दादा जान बूढ़े हैं। मैं चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, इससे पहले कि उनको कुछ हो जाए उनकी फैमिली में सुलह करूँ।
शायद आपका ये काम किसी की मसलहत में ना हो।
माफ़ कीजिए, इस मसलहत की तशखीस कौन करेगा?
मेरे ख्याल से अगर आपको पता चले कि आपके चचा का मसला क्या है तो शायद आप सुलह ना कराएं।
आप बेफिक्र रहिए, इस बात के लिए परेशान ना होइए।
बहुत से लोग अपनी इज्जत और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए यही करते हैं जो आपके बड़ों ने किया है।
लेकिन मैं इन लोगों में से नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि नशा एक ऐसा मसला है जो दूसरों की बेइज्जती का सबब बने। मेरे ख्याल में एक एडिक्ट आदमी एक तरह का बीमार है जिसका इलाज किया जा सकता है, अलबत्ता अगर वो चाहे। पता है क्या मैडम सिराज, इस अरसे में जो अपने चचा को ढूंढ रहा हूँ, मुझे उनके बारे में बहुत से हकायक पता चला। मैं चाहता हूँ अपने चचा को किसी भी कीमत पर अपनी फैमिली के साथ मिला सकूँ, क्योंकि जानता हूँ कि अगर किसी इंसान को ऐसे हालात में तनहा छोड़ दिया जाए तो उसका मसला मज़ीद पेचीदा हो जाता है, अलबत्ता अगर अब तक मज़ीद पेचीदा ना हुआ हो।
आपके चचा उस ज़माने में जब लैला दूसरी में पढ़ती थी स्कूल के सामने कई बार आए, उनका हुलिया चूंकि मुनासिब नहीं था तो मैंने अपनी ड्यूटी समझते हुए मैंने कहा कि स्कूल के लिए मसला पेश ना आए, पुलिस को फोन कर दिया। वहाँ था कि हमें पता चला कि उसकी बेटी यहाँ पढ़ती है।
अच्छा,
तो हमने लैला को उससे मिलने नहीं दिया, उसकी माँ को फोन किया। जब उसे पता चला कि लैला का बाप स्कूल तक पहुँच गया तो बहुत नाराज हुई और हमें बाप बेटी को मिलने से सख्ती से मना कर दिया। अलबत्ता आपके चचा की जो हालत थी उसके पेश नजर हम तुम्हारी चची को हक बजानब समझते हैं। उन्होंने अपनी बेटी से कह रखा था कि उसके वालिद सफर पर गए हैं और इस तरह की दूसरी छोटी बातें जो आखिरकार फाश हो जाती हैं। अंदर आइए।
लीजिए जनाब।
बहुत शुक्रिया।
ये ले।
शुक्रिया। आपकी चची रिपोर्ट कराना चाहती थी लेकिन हमने कहा कि कानूनी लिहाज से वो बेटी और बाप को मिलने से नहीं रोक सकती। तय पाया कि स्कूल में सिलसिले में एक मीटिंग रखें।
लैला के साथ?
नहीं, आपकी चची के साथ।
उन्होंने कितने अरसे से एक दूसरे को नहीं देखा था?
मेरे ख्याल से 1 साल से। आपकी चची कह रही थी 1 साल से अपने शोहर को नहीं देखा है। 1 साल के बाद उनकी इसी कमरे में मुलाकात हुई।
उन्होंने लैला को नहीं देखा?
नहीं, पता नहीं आपकी चची ने ऐसा क्या कह दिया कि वो लैला से नहीं मिले।
उसके बाद नहीं आए?
जब तक लैला यहाँ थी मैंने फिर उन्हें नहीं देखा। उसी टाइम जब हमें उनके मसले का पता चला, कभी कभी लैला को बताए बगैर उसकी माँ की हम लोग मदद किया करते थे। लेकिन कुछ अरसे के बाद उसने अपना एड्रेस तब्दील कर दिया। हमसायों को उनके नए एड्रेस का कोई भी इल्म नहीं था। ये जो मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं इल्म, तो ये सच कह रही हूँ। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती।
मैडम सराज माफ़ कीजिएगा, उम्मीद है आप मेरी बातों को गुस्ताखी नहीं समझेंगे। ज़रूर आप सच कह रही हैं, लेकिन ये इंसाफ नहीं है कि मेरी चचाजात को अपने बाप की नासमझी की सज़ा मिले और अपनी फैमिली से मिलने से महरूम रहे। मैं तेहरान के तमाम स्कूलों को छान मारूंगा और आखिरकार उसे ढूंढ निकालूंगा।
मैं आपकी सिर्फ एक मदद कर सकती हूँ। इसके बाद आपकी चची चाहती थी कि अपनी बेटी का एडमिशन अपने फैमिली नेम से।
ऐसा हो सकता है क्या?
नहीं नहीं हो सकता है। लीजिए, हमने उनसे कहा कि नहीं हो सकता, लेकिन उनसे कहा कि जाके स्कूल पसंद कर ले, फिर आके हमसे लेटर ले ले, ताकि स्कूल की हेड लैला का बेहतर तौर से ख्याल रख सके।
तो फिर मेरी चची लेटर लेने आई? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि मेरी चचा के लिए जो मुश्किल पेश आई उससे चची ये क्यों समझती हैं कि बेटी को फैमिली से अगर ना मिलने दें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
बहरहाल हर किसी की ज़िंदगी का अपना एक तरीका होता है।
हाँ, लगता है आजकल के ज़माने में किसी को अपनी गलती की तरफ तवज्जो नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको छोड़ देना चाहिए कि पत्थरों से टकराएं, तन्हाई सहें ताकि अक्ल आए। बहरहाल फिर भी शुक्रिया।
हमने उनको ज़ैनबिया स्कूल के लिए लेटर दिया था।
इसी इलाके में है?
नहीं, 10 नंबर इलाके में।
मेहरबानी करके उसका एड्रेस मुझे दे दीजिए। ये लीजिए।
एड्रेस लिख देती हूँ और स्कूल के हेड को भी फोन करके आपके जाने का भी बता देती हूँ। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, अपनी चची को राजी करने से पहले अपनी चचाजात से मिलने के लिए कदम ना उठाइए। मुझे उम्मीद है कि लैला की मदद हो जाए। वो पढ़ाकू लड़की है, आजकल रिश्ते बहुत फीके पड़ गए हैं। बच्चों को ना मामू का इल्म है ना ही चचा का, सबको अपनी फिक्र लगी हुई है, और ऐसे हालात में हमें भी समझ नहीं आती कि क्या करें।
बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर लैला अपने दादा दादी के साथ रहें तो अकेले रहने से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है।
जी बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।
लीजिए।
बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया।
कोई बात,
अब अगर इजाजत है तो मैं चलता हूँ।
खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
हेलो।
अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिया साहब।
वालेकुम सलाम।
एक गाड़ी हाथ लगी है बिल्कुल आपके पसंद की।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
एड्रेस दें ताकि मैं खिदमत में हाजिर हो जाऊं।
नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खुद ही शोरूम आ जाऊंगी।
मैं शोरूम में नहीं हूं, तैमूरी साहब के पास हूं। गाड़ी उनकी है और अपनी गाड़ी के लिए हसास भी बहुत हैं। गाड़ी को शोरूम में खड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी खातिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कुछ देर के लिए गाड़ी मुझे दे दें ताकि आपको दिखाने के लिए ले आऊं। वो भी मान गए,
लेकिन
देर करेंगी तो हाथ से निकल जाएगी।
ठीक है,
आधे घंटे बाद। कैसी लगी?
अच्छी है।
अच्छी, शानदार है। ये तो जबरदस्त गाड़ी है बगैर किसी ऐप के।
कितने की है?
180 मिलियन कह रहा है, लेकिन मैं आपके लिए अच्छी कंसेशन ले लूंगा। मेरा लाभ जैसा ग्राहक तो रोज रोज नहीं आता ना हमारे पास।
180 मिलियन तुमान?
बिल्कुल मुनासिब बता रहे, कीमत तो इससे भी ज्यादा है।
देखिए सूफी साहब, मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक सस्ती गाड़ी चाहिए, आप जाके 180 मिलियन की गाड़ी ले आए।
हाँ हाँ, मानता हूँ कि कीमत थोड़ी सी ऊपर है।
थोड़ी सी? मैं गाड़ी के लिए इतना पैसा नहीं दे सकती, मुझे 100 मिलियन से कम की गाड़ी चाहिए।
अरे ये गाड़ी बहुत शानदार है, बॉडी और इंजन बिल्कुल नया है। मैं गारंटी देता हूँ कि कसम से इसका हाथ से निकलना अफसोस की बात होगी।
लेकिन बात ये नहीं है, मुझे एक अपार्टमेंट लेना है।
मुझे एक अच्छे अपार्टमेंट का भी इल्म है।
नहीं शुक्रिया, मुमकिन है जहाँ रह रही हूँ यही अपार्टमेंट लूं।
यहाँ 1 मीटर कितना किराया दे रहे हैं?
मैंने अभी तक बात नहीं की है, आपको मुझसे कोई काम नहीं है?
मतलब ये नहीं चाहिए आपको?
नहीं, इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है और इसका रंग भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
आपको कौन सा कलर पसंद है?
रेड, पर्पल।
अरे बुजुर्ग मेरे साहिबा, SUV गाड़ियों में ये कलर नहीं आता कसम से। लेकिन ठीक है, इस कीमत में कुछ मिला तो मैं ले आऊंगा।
सूफी साहब, इसके बाद कभी भी यहाँ गाड़ी लाने की जहमत ना करें, मैं खुद शोरूम आ जाया करूंगी।
बुजुर्ग मेरे साहिबा, ठीक है ओके, तो फिर मैं चलता हूँ।
या अल्लाह,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
यहाँ क्यों बैठे हैं?
बस ऐसे ही।
खाना खाया है?
नहीं, लेकिन भूख नहीं है। दादी जान लो कहाँ है?
सो गई है। आइए कमरे में चलते हैं।
अल्लाह ने चाहा तो हमारे मसाइल ये के बाद दिगरे हल हो रहे हैं।
खुदा का शुक्र। देखा, मैंने कहा था कि खुद को परेशान न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उठे चलते हैं तूबा के पास।
नहीं, मुझे वर्कशॉप जाना होगा।
अपनी बेटी को देखना नहीं है? अगर बताऊं कि ऐसे वो दादी जान के लिए मुस्कुरा रही थी।
अच्छा? हाँ।
बहुत अजीब है, दादी जान को जब देखती है तो बहुत हंसती है, लेकिन हुमा पुप्पू को देख के सिर्फ टुक टुक देखती है।
एक अच्छी खबर लाया।
इंशाल्लाह खैर की खबर होगी।
कहो किसकी है?
हमी चचा को ढूंढ निकाला?
नहीं, हमी चचा की बेटी लैला को ढूंढा है।
सच कह रहे हैं? कहाँ मिली?
अभी मिली नहीं है, लेकिन उसके स्कूल का एड्रेस ले चुका हूँ। अब जाके एड्रेस पे मिस्ट्रेस से बात करूंगा ताकि चची से मिल सकूं।
दादा जान को भी बता दें?
अभी नहीं, मैं नहीं जानता कि उनके हालात कैसे हैं। पहले मुझे खुद उनसे मिलने दो, अगर उनके हालात मुनासिब है तब।
इतनी नेक कदम बेटी देखी थी? मुझे तो अपनी बेटी का नाम नेक कदम रखना चाहिए।
बिल्कुल।
बेटा समाना, कुछ हुआ है?
नहीं।
तो परेशान क्यों हो?
कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकी हुई हूं।
इस्माइल कैसा है?
ठीक है।
फिर क्या किया उसने?
लॉय लॉय लड़ा। इस बिचारने के साथ क्या काम है आपको? इस्माइल है
समाना। बेटा बताओ मुझे क्या हुआ?
जी जी बताती हूँ आपको।
आइए आइए प्लीज।
शुक्रिया शुक्रिया।
खुश आमदेद। आइए।
सलाम अलैकुम कासिम साहब। सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
आप ठीक हैं?
खुश आमदेद।
ठीक है। सलाम अलैकुम समाना, तुम ठीक हो? आती क्यों नहीं समाना? कुछ हुआ है क्या?
मैं बस ये भी यही पूछ रहा था।
अम्मी समाना कहाँ चली गई?
लगता ऊपर चली गई।
माफ कीजिएगा काजिम साहब, मैं जरा एक मिनट के लिए ऊपर जाता हूँ। यहाँ किस लिए आई हो? आओ नीचे चलते हैं, मुझे जल्दी वापस जाना है।
तुम यहाँ क्यों आए हो?
आ जाओ नीचे चलते हैं, वरना अब्बू लोग नाराज हो जाएंगे, समझेंगे कुछ हुआ है।
नहीं हुआ है क्या? मैं अब्बू को सब कुछ बता दूंगी।
समाना खुदा की कसम, मैं कसूरवार हूँ, माफ कीजिए माफ कीजिए। आज जरा जल्दी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर आया था, खोपड़ी पर धूप लगी, दिमाग गर्म हो गया।
मैं अब थक गई हूँ। तुम्हारा मसला वाकई में बड़ा है।
मुझ में कमी है? है या नहीं कहो ना, मुझ में कमी है कहो ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मानता हूँ तुम सच कह रही हो, मुझ में कमी है और मेरी कमी बहुत बड़ी है, लेकिन ये तो लड़ाई झगड़े से हल नहीं होने वाला। तुम साथ दो ताकि हल हो जाए। समाना समाना देखो देखो, कसम से जब मुश्तरका जिंदगी शुरू कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। असल में मेरा दिमाग तुम्हारी दूरी की वजह से खराब हो जाता है, पागल हो जाता हूँ। हसास हो जाता हूँ, खुद पर काबू नहीं रख सकता।
क्या कह रहे हो इस्माइल, यूं तो हमारी मुश्तरका जिंदगी का आगाज कभी नहीं हो पाएगा।
ठीक है, अभी शुरू नहीं करते, जब तुम कहोगी उस वक्त शुरू करेंगे। ठीक
है, मैं इस तरह से तुम्हारे साथ नहीं जिंदगी गुजार सकती।
क्या मतलब, क्या मतलब?
मतलब ये कि दो बच्चों के लाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचने से बेहतर है कि अभी से अलग हो जाएं। तुम जब गुस्से में आते हो तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। मैं जिस कदर भी सोचती हूँ कि तुम्हारे कामों से चश्मपोशी करूं, नहीं कर सकती हूँ मैं, बिल्कुल मुमकिन नहीं।
मैंने ऐसा क्या किया है, तुम बताओ ना।
तुम सब पर इल्जाम लगाते हो, हत्या उन अफराद पर के जिनको जानते तक नहीं।
ठीक है, इस दफा वाकई मेरी गलती थी, गुस्से में आ गया, मुंह से बकवास निकल गई। प्लीज तुम भूल जाओ ना।
नहीं, नहीं भूल सकती।
देख रही हो, देख रही हो, देख रही हो अपना काम, अपनी आदतें देख रही हो। जब किसी चीज की जिद पकड़ लेती हो तो छोड़ती नहीं है। अब इस बात का और भी पतंगड़ बनाओ, इतनी बड़ी बात बनाओ कि सुधारने के काबिल ना रहे। अरे मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई, तुम छोड़ती क्यों नहीं?
देखो, हमारा ये मसला हमेशा के लिए रहेगा। तुम्हारे दिल में जो आए करते हो, जो मुंह में आए बोलते हो, आखिर में कह दो कि माफ करना मुझसे भूल हो गई। लेकिन इस दफा बात अलग है, इस तरह से मसला हल नहीं होगा।
नहीं होगा। देखो, ऐसी मुश्किलें जब पेश आती हैं तो तुम ये समझती हो कि उनमें से सिर्फ मेरा कसूर है, मेरा कसूर होता है सिर्फ।
मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस तरह से हम इज़्ज़ाज़ी जिंदगी शुरू नहीं कर सकते।
अच्छा, तो तुम मानती हो कि तुम्हारा भी कसूर है? नहीं मानती। एक मिसाल बताऊं तुम्हें, मैं बताता हूँ मोहतरमा समाना साहिबा, मसलन तुम देर से क्लास मत जाओ, मैं कहता हूँ, लेकिन तुम क्या करती हो, ढूंढती रहती हो कि कौन सी क्लास सबसे लास्ट में है, उसको ले लेती हो और देर से यूनिवर्सिटी जाती हो। तो ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मसलन तुम आधी रात को सड़कों पर घूमना चाहोगी, क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि मुझे गुस्सा देने के लिए तुम ये ऐसा काम करो, मुझे पागल बनाने के लिए?
मुझे अब्बू को बताना होगा कि मुझे अपनी राय बदलनी है। तुम्हारी बातें टकरारी हैं।
कौन सी राय बदलनी है?
हट जाओ।
नहीं हटा तो क्या कर लोगी?
अब्बू को पुकारूंगी।
देखो समाना, हमें सीखना होगा कि हम अपनी मुश्किलात खुद हल करें। अब मसलन तुम अब्बू को जाकर ये बात बता दोगी तो क्या होगा, वो मुझे तलाक देने पर मजबूर तो नहीं कर सकते? तुम अपने इन कामों से सिर्फ उनको और ज्यादा परेशान करोगी। मैं बता दे रहा हूँ, कोई तीसरा हमारे मामलात में दखल देगा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। हाँ मैं कह दे रहा हूँ तुम्हें, मेरी कसम, किसी और को बीच में मत लाना। मेरी तरफ देखो, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो? जो कहोगी करूंगा, तुम जो भी कहोगी मैं करने को तैयार हूं। कहो।
जो भी कहूं?
हाँ खुदा की कसम, जो भी तुम मरने को कहोगी तो मैं मर जाऊंगा। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें, तुम जानती हो पागल,
मुझे इस तरह का प्यार नहीं चाहिए।
ठीक है, सिर्फ इस दफा काजिम साहब को ना बताओ। तुम जानती हो ना कि उनको पता चल जाएगा तो बिल्कुल से ताल्लुकात खत्म कर देंगे, वो बिल्कुल खत्म कर देंगे।
ठीक है, तो तुम्हें मेरे साथ माहिर नफ्सियात के पास चलना होगा।
क्या, क्या तुमने क्या कहा? अरे तुमने क्या कहा?
देखा, देखा, सिर्फ बातें करते हो, जब अमल की बात आती है तो कुछ नहीं करते, सिर्फ बातें करते हो।
क्या मैं पागल हूँ? तुम ये कहना चाहती हो मैं पागल हूँ?
मैंने कब कहा कि तुम पागल हो?
अरे माहिर नफ्सियात वही पागलों का डॉक्टर होता है। हम अनपढ़ हैं लेकिन इतना नहीं है।
देखो, दुनिया में जहां भी किसी को ऐसी कोई मुश्किल पेश आती है तो वो माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं और कोई उनको पागल नहीं कहता। देखो इस्माइल, दो रास्ते हैं, तुम सिर्फ एक का इंतखाब कर सकते हो। या तुम्हें मेरे साथ माहिर नफ्सियात के पास जाना होगा, नहीं तो मैं अब्बू को सब कुछ बता दूंगी और हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम खुद इंतखाब करो।
तुम जानती हो कि काजिम साहब को मैं अच्छा नहीं लगता और वो इस ताल्लुक को खत्म करने के लिए फुर्सत की तलाश में है। समाना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ठीक है, ठीक है, टाइम ले लो, मैं मेरे नफ्सियात के पास आता हूं।
इस्माइल, इस्माइल बेटा रात के खाने पर रुक जाते हैं?
नहीं अम्मी जान, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी है आपकी, मुझे घर जाना है, मेहमान आ रहे हैं, अम्मी ने कहा है कि कुछ सामान खरीदना है, ले जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ।
ठीक है बेटा, जीते रहो, अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना।
जी बिल्कुल।
खुदा हाफिज।
काजिम साहब मैं चलता हूं।
खुदा हाफिज।
क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ?
हाँ बेटा क्यों नहीं, अंदर आओ। फिर लड़ाई हो गई?
ये लड़ाई तो कब से चल रही है
बेटा? ये अज़दवाजी जिंदगी शुरू करने से पहले ही आप लोगों का इतना झगड़ा, ये अच्छी अलामत नहीं है।
मैंने उसे कह दिया कि हमें माहिर नफ्सियात के पास जाना होगा।
मान गया?
उसे मजबूर कर दिया।
मैं उस दफा मोबाइल के तोड़ने के मसले में बहुत गुस्सा हो गया था, अगर तुम्हें उससे जुदा होने कहा था तो ये ज्यादा रवि थी, लेकिन ये जो तुमने सोचा है ज्यादा मुनासिब है बेटा।
क्या आपके ख्याल में इससे कोई फायदा होगा?
जरूर होगा बेटा, कम से कम इतना फायदा होगा कि तुम्हें अपना फैसला करने में आसानी होगी। अगर माहिर नफ्सियात ने तुम दोनों के लिए अच्छे मुस्तकबिल की राय नहीं दी तो कम से कम ज्यादा इत्मीनान के साथ फैसला कर सकती हो, परेशान ना हो।
अब्बू जान आप मुझसे नाराज हैं। मैं ऐसा नहीं चाहते थे अब्बू।
बीता दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा दरवाजा, जल्दी से खोलो दरवाजा, जल्दी करो।
पागल हो गए आप सब।